श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 24 शीर्षक कर्दम मुनि का वैराग्य श्लोक क्रमांक 40। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणा वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। माता मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्रे अपनी माँ को आध्यात्मिकीं आत्मजीवन के द्वार खोलने वाली विद्याम ज्ञान विद्या को शमनीम समाप्त करने वाली सर्वकर्मणाम समस्त सकाम कर्मों को वितरिष्ये मैं प्रदान करूंगा यया जिससे च भी असौ वह भयम डर च भी अतितरिष्यति पार कर लेगी। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मैं इस परम ज्ञान को जो आत्मजीवन का द्वार खोलने वाला है अपनी माता को भी बताऊंगा जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। तात्पर्य, गृह त्याग के समय कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के लिए अत्यंत चिंतित थे। अतः योग्य पुत्र ने वचन दिया कि न केवल कर्दम मुनि भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरन देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश से मुक्त हो सकेगी। यहां पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। पति आत्म साक्षात्कार के हेतु संन्यास ग्रहण करके चला जाता है और उसका प्रतिनिधि, उसका पुत्र जो उसी के समान शिक्षित है, घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। सन्यासी अपने साथ अपनी पत्नी नहीं ले जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को सहायक के रूप में अपने साथ रख सकता है, परंतु उसके साथ संभोग नहीं कर सकता। किंतु सन्यास आश्रम में वह पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। अन्यथा कर्दम जैसा व्यक्ति अवश्य ही पत्नी को साथ रखे होता और आत्म साक्षात्कार की साधना में उसे कोई अड़चन न हुई होती। किंतु कर्दम मुनि ने वैदिक आदेश का पालन किया, जिसके अनुसार सन्यास जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। किंतु उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर जाता है? वह पुत्र को सौंप दी जाती है और पुत्र वादा करता है कि वह उसे बंधन से मुक्त करेगा। स्त्री संन्यास ग्रहण नहीं करती। आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां स्त्रियों को भी संन्यास प्रदान करती हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में स्त्रियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है। अन्यथा विधान होने पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ ले जाकर उसे भी संन्यास दे देते। किंतु स्त्री को तो घर पर ही रहना चाहिए। उसके जीवन की तीन अवस्थाएं हैं: बालपन में पिता पर निर्भर रहना, तरुणापा में अपने पति पर आश्रित रहना, और वृद्धावस्था में सयाने पुत्र तथा कपिल यथा कपिल पर आश्रित रहना। वृद्धावस्था में स्त्री की प्रगति उसके सयाने पुत्र पर निर्भर करती है। आदर्श पुत्र कपिल अपने पिता को आश्वासन दे रहा है कि वह अपनी माता का उद्धार करेगा, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी से निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक जा सके। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। मैं इस परम ज्ञान को जो आत्मजीवन के द्वार खोलने वाला है अपनी माता को भी बताऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन एक जवाबदारी का जीवन है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीनः पशुभि समानः। मनुष्य जीवन जो पशु जीवन से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता या खासियत ये है कि यहां उसे एक विवेक बुद्धि मिली है, जिसके द्वारा वह मनुष्य जीवन का उद्देश्य को जानकर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के हेतु जो भी कार्य है उसे बड़े जवाबदारी के साथ निभाए। एक आदर्श उदाहरण यहां कर्दम मुनि के प्रसंग में हम यहां देखते हैं। हर एक व्यक्ति इस प्रसंग में स्वयंभू मनु, कर्दम मुनि, देवहूति और भगवान कपिल उनके पुत्र, सब लोग किस तरह से अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहे हैं। महाजनो ये नगतस्य पन्था, मनु एक महाजन है और दिखा रहे हैं, एक आदर्श उदाहरण दिखा रहे हैं। जब उन्होंने अपनी राजपुत्री स्त्री जो ऐशो आराम के जीवन में पली हुई थी उसको एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा जो बाहरी रूप से देखा जाए तो निर्धन, तपस्वी, कहीं जंगल में रहने वाले आश्रम में, पर स्वयंभू मनु को अपनी जवाबदारी मालूम थी। भागवत कहता है सबसे बड़ी जवाबदारी क्या है, गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी सस्यात, दैवम न सस्यात, न पतिम न सास्यात, नमो चये तत् समुपेत मृत्युम। कोई भी व्यक्ति गुरु, पिता, माता, पति इत्यादि कोई भी जो उपाधि हम धारण करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने ऊपर जो निर्भर हैं उनको सदगति प्राप्त कराना। और सर्वोच्च सदगति क्या है, न मोचये तत् समुपेत मृत्युम, आने वाली जो मृत्यु है हमेशा के लिए मृत्यु के भय से उसको निकाल देना, यह सबसे बड़ा कर्तव्य है। और वो कैसे? भक्ति के द्वारा। तो उस लक्ष्य को साथ सामने रखकर स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति को कर्दमुनि के हाथों सौंप दिया। देवहूति क्योंकि वो अच्छी तरह से आत्मज्ञान में प्रशिक्षित थी, वैदिक संस्कृति को अच्छी तरह से जानती थी, जीवन का उद्देश्य को अच्छी तरह से जानती थी, उसने भी अपनी इंद्रिय सुख की परवाह न करते हुए योग्य रूप से अपने पति की सेवा की। कुछ भी अपेक्षा न करते हुए, नो कंप्लेंट, करती रही करती रही करती रही। उसे मालूम था कि मेरे पति जो हैं ये योग्य हैं, और ये वो उनका कर्तव्य में चूकेंगे नहीं, और उनके अंदर वो शक्ति है कि मेरे सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अच्छी तरह से सेवा की उन्होंने, देव माता देवहूति ने अपना कर्तव्य निभाया परफेक्ट अच्छी तरह से। कर्दमुनि क्योंकि वो अपने कर्तव्य में मग्न थे और उसमें उसकी पति ने मदद, पत्नी ने मदद किया, उन पर दया करके अच्छी तरह से जानते हुए कि उनकी क्या जरूरतें हैं, ये जवाबदारी है हर एक व्यक्ति की, जो जरूरतें हैं सबसे प्रमुख है आध्यात्मिक जरूरत, आत्मज्ञान की जरूरत। उत्तमम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम उदम, उत्तमम सबसे उत्तम जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान। पर सिर्फ उत्तम चीज को प्रदान करते हुए दूसरे जरूरतों को अवहेलना करना भी एक प्रकार की बेजवाबदारी। थोड़ी बहुत इच्छाएं होती है, भौतिक इच्छाएं होती है, उनको भी पूर्ण करना, शरीर की जरूरतें, शरीर को अच्छी तरह से रखने के लिए जो योग्य है योग्य तरीके से, मानसिक रूप से उसे संतुष्ट रखना, भावनात्मक दृष्टि से उस व्यक्ति को संतुष्ट रखना, सामाजिक जो जिम्मेदारी है उनको भी निभाते हुए, और साथ साथ में पर इन चीजों को निभाते हुए आध्यात्मिक में कभी कमी ना करना, जो सबसे बड़ी जरूरी जरूरत है। तो कर्दमुनि ठीक समय पर अपनी शक्ति से माता देवहूति की जो इच्छा थी उसको भी पूर्ण रूप से एक ऐसा इस तरीके से पूर्ण किया कि शायद कोई राजा नहीं कर सकता था अपनी राजपुत्री को, ऐसे अपनी स्त्री को, विरला कोई ऐसा राजा हो। राजा लोग क्या करेंगे, यहां से स्विट्जरलैंड जाएंगे, गरीब आदमी है तो महाबालेश्वर जाके आ जाएगा हनीमून के लिए, और राजा है बहुत पैसा है तो स्विट्जरलैंड जाएगा सिंगापुर जाएगा। पर कपिल मुनि ने नॉट इंटरनेशनल, इंटर प्लैनेटरी अलग अलग ग्रहों में ले गए जहां स्वर्ग लोक के निवासी आके रमण करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसे जगह नहीं छोड़ा भोग की जगह जहां वे दर्शन के लिए नहीं गए हो। पूर्ण रूप से वो जिम्मेदारी निभा दी। पर देव होते भी कोई कम नहीं थी, वो जानती थी ये सब ठीक है, पर असली चीज क्या, आप तो चले जाओगे अपना कर्तव्य निभा के आप चले जाओगे, पर मेरा उद्धार कैसे होगा। तब नौ रूप में विस्तृत करके नौ बच्चे पैदे हुए पर सबके सब पुत्री थे जिनका विवाह होकर भेजना था। तो वो कहती है कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो स्त्री हूं, कम बुद्धि वाली हूं, तो मुझे कोई, और आप चले जाओगे पति, पहले तो पिता थे स्वयंभू मनु, उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया, पति को सौंप दिया, और अगर आप भी चले जाओगे तो अब मैं कहां जाऊंगी। बोले ठीक है, पुत्र एक ऐसा पुत्र है जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है। और अब यहां पुत्र कपिल, भगवान कपिल देव, वो अपने पिता को आश्वासन दे रहे हैं एक योग्य पुत्र के रूप में। पुन्नाम नरक त्रायते इति पुत्र, पुत्र ये दो शब्द का बना हुआ है, दो अक्षरों का बना हुआ है ये पुत्र। त्र यानी तारना, किस चीज से? पुन्नाम नरक, पुन नाम का एक नरक है। अगर ऐसे पिता जो अपने कर्तव्य को नहीं किए या कोई पाप कर्म हो गया हो और अगर नरक में भी गए हो तो उसको पिंडदान करते, पितृ पितृ को जो कर्तव्य ऋण है, पितृ ऋण, उसको चुकाकर पूर्वजों का उद्धार करना, ये हर एक देव ऋषि भूतात ऋणाम पितृणाम सबके प्रति हमारा ऋण है। इस संसार में जीने के लिए देवताओं का ऋण है, सूर्य का ऋण है, चंद्र का ऋण है, वायुदेव का ऋण है, इंद्रदेव का ऋण है, अरे ऋणी हम लोग, और चुकाएंगे नहीं तो चोर बन जाएंगे हम लोग। शर्मिंदा की बात है अगर किसी से ऋण लिया और चुकाया नहीं उसको। देव ऋषि, ऋषियों का ऋण है सब ज्ञान प्राप्त करने में, भूत जनसाधारण का ऋण है, हाँ पशु गाय का दूध पीते हैं हम लोग, उसका ऋण है हमारा, तो कई सारे ऐसे पशु पक्षी है जो मदद करती है हमारे जीने में। इस शरीर को जीने के लिए कितने लोगों पे निर्भर होना पड़ता है, इस शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए कितने चीजों पर निर्भर होना पड़ता है, हवा पर निर्भर, धूप पर निर्भर, पेड़ पर निर्भर, पौधों पर निर्भर, सब्जी वनस्पतियों पर, देव ऋषि भूत आप्त निणाम, इंजीनियर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, बहुत सारे कंसल्टेंट, आज तो छींकने के लिए भी कंसल्टेंट चाहिए, इतने सारे निणाम सब चीजों के लिए कंसल्टेंट, पितृणाम जो शरीर दिए हैं पितृजों के प्रति, तो वो ऋण यहां चुका रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कपिल मुनि, कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप निश्चिंत होकर जाइए पिताजी, ये आदर्श पुत्र है जो अपने पिता को अपने कर्तव्य करने में मदद करके उन्हें निश्चिंत करा दे, कोई चिंता नहीं मैं हूं। तो महाराज भगवान कपिल अपने पिता को ये शब्द कह रहे हैं, मात्र आध्यात्मिकीं विद्याम, माता की चिंता थी कि मेरा उद्धार कैसे होगा, कर्दम मुनि की चिंता थी कि अगर मैं अपना कर्तव्य, मुझे संन्यास लेना है पर अगर घर में ही टिके रहूंगा तो मेरा कर्तव्य ठीक से मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक कर्तव्य ये भी है कि एक आदर्श उदाहरण दे के जाना अपने परिवार को और अपने ऊपर जो निर्भर है। एक राजा को, राजा का कर्तव्य है प्रजा का सेवा करना, पर सबसे बड़ा कर्तव्य है ठीक समय पर निकल जाना, ठीक समय पर निकल जाना भी एक कर्तव्य। क्यों? क्योंकि राजा के पास सबसे ज्यादा भोग वस्तु है, राज्य है, धन है, सेना है, संपत्ति है, रानी है, शक्ति है, पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन, नेम, फेम, वो अगर उतने बड़े चीज को त्याग के नहीं जाए तो फिर प्रजा को कैसे उदाहरण मिलेगा। साधारण जन में भी हम सुनते हैं, अरे वो बड़ा आदमी है, 5 करोड़ खाता है, मैं 5 रुपया खाता हूं, क्या अंतर पड़ता है? अपने अपने जो खाते हैं सब लोग। इसीलिए हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जब परीक्षित तैयार हो गए, क्योंकि अभिमन्यु तो मारे गए थे, जब परीक्षित महाराज पौत्र तैयार हो गए, पूछे उनसे, ये भी एक जिम्मेदारी है कि ये योग्य व्यक्ति होगा या नालायक बनेगा, ज्योतिषों को बुलाए, बोले इसको इसका कुंडली देखो, बताओ मेरे को कैसा व्यक्ति होगा ये। और जब पता चला, उन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, ये राम जैसा योद्धा बनेगा, हिमालय जैसे सबको आश्रय देगा, पृथ्वी जैसा सहनशील होगा, शेर जैसा कभी अपने शत्रु को छोड़ेगा नहीं, मार के, शेर जब पीछे जाता है मार के शिकार करके ही वापस आता है, वापस कभी लौटता नहीं है, शेर जैसा ऐसा कली के पीछे भी पड़ जाएगा, ये कली को भी छोड़ेगा नहीं, कलयुग में उसके युग में उसको भी प्रवेश नहीं देगा ये। जब ये महाराज युधिष्ठिर सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और जैसे योग्य उम्र पे आ जाते हैं उसको सौंप कर बिना पीछे मुड़े चले जाते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है, तो कर्दम मुनि को वो भी एक उदाहरण, आदर्श उदाहरण देना था, अपना कर्तव्य निभाना था। ऑफ कोर्स वो अगर अपना कर्तव्य निभाए, प्रहलाद महाराज का देखते हैं, अपना कर्तव्य निभाए तो उनके सारे पूर्वज का भी उद्धार हो जाएगा। तो कर्दम मुनि निकल रहे थे, पर उनकी चिंता थी कि एक जवाबदारी अधूरा रह गया, ये पत्नी बिचारी अभी इसका क्या होगा, मैं तो संन्यास ले रहा हूं, इसको साथ में तो नहीं ले जा सकता, वानप्रस्थ हो जाएगा, सब दोनों मिलके हम लोग जाएंगे यात्रा में। तो कपिल, भगवान कपिल जो है आश्वासन दे रहे हैं, पिताश्री आप चिंता मत करो, मैं हूं इधर। एक आदर्श पुत्र के रूप में न केवल अपनी माता मतलब अपनी पिता को भी निश्चिंत करके उनको आश्वासन दे रहे हैं। और 3 बातें यहां बताई गई है, गुरु न सस्याचरण नमो चये तत् समुपेत मृत्युम। सबसे बड़ी जवाबदारी क्या है? आध्यात्म ज्ञान देना। और ये आध्यात्म ज्ञान कैसा है? आध्यात्मिकीं विद्याम, आध्यात्मिक ज्ञान 3 चीज करना चाहिए, कम से कम यहां बताया गया है। शमनीम सर्वकर्मणाम, एक आत्मजीवन का द्वार खोलने वाला है, आत्मजीवन का द्वार खोलने वाला है। एक शरीर का जीवन है और दूसरा आत्मा का जीवन है। साधारणतः हम शरीर पर इतना स्वाभाविक है, जो एक दूसरे को हम देख सकते हैं, शरीर और मन जो है इसका अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव करना बहुत मुश्किल है, आत्मा को जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको राजविद्या कहा गया है। तो आत्मजीवन का द्वार खोलने वाला है यह आध्यात्मिक ज्ञान जो है, राजविद्या आध्यात्मिक जीवन का द्वार खोलने वाला है। और वो द्वार खुला, अभी बंधन में है हम लोग, द्वार बंद है और हम बंधन में हैं, जेल जैसा, शरीर जो है आत्मा के लिए एक जेल है, तो जेल का द्वार खुलेगा तब मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति का द्वार है ये पहला चीज। दूसरा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके, सिद्धि परमम, परम सिद्धि क्या है वो भी गीता में वर्णन है, आब्रह्म भुवनाल लोका अपना मामुपेते पुनर्जन्म विद्या न विद्यते। और एक श्लोक है, परमम सिद्धिम इति मताम, के परम सिद्धि है भगवान की शुद्ध भक्ति, क्योंकि वो परम मुक्ति है। जिससे कर्माणि निर्दहति यथै धांसि समिद्धोग निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये ज्ञान की जो अग्नि है, ये ज्ञान आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान और भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध, ये ज्ञान में जो स्थित हो जाता है ज्ञानम विज्ञान सहितम, वो व्यक्ति अपने आप सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म के बंधनों से। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, क्लेशाग्नि सारे क्लेश, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध फल कूट बीज क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मना, सारे कर्मों से हमें धीरे 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 मुक्त कर देता है। और फिर जब हमारे जीवन में जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो कर्मों के द्वारा नहीं आ रही है, वो भगवान वैयक्तिक रूप से हमारे जीवन को वो कर्म दे रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा है। प्रभुपाद जी जैसे लिखते हैं, पंखा जब बंद हो गया और पंखा पूरा चल रहा था और आपने बंद कर दिया, बंद करते के बाद भी घूमता है थोड़ा, पर अभी जो घूम रहा है वो थोड़ा बस पुराना जो जोर से घूम रहा था उसके लिए थोड़ा देर समय थोड़ा घूमेगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा। तो भक्तिमय जीवन में जब लगते हैं तो वो कर्म चले गए और उस समय जो कर्म हमें नजर आता है वो कर्म डायरेक्टली भगवान हमारे जीवन में चला रहे। योगक्षेमं वहाम्यहम्। और तीसरी बात, भयं चाति तरिष्यति, इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाओ। भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् विपर्ययो अस्मृतिः। जब भगवान को हम भूल जाते हैं तब भय उत्पन्न होता है। भागवत कहता है भयं द्वितीया अभिनिवेश, भय से अभिनिवेश होना कब, जब ईशाद अपेतस्य, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण सूरज के समान है, सूरज की ओर देखेंगे तो अंधकार नहीं मिलेगा, सूरज से विमुख हो जाएंगे तो परछाई नजर आती है, अंधकार दिखता है। इसी तरह से भय उस व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा जो भगवान को जाना है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। ये सारी चीज हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर के जीवन में, जिनका आज आविर्भाव तिथि है। श्रीवास ठाकुर हमेशा उनके घर में कीर्तन हुआ करता था, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण होने से पहले भी नवद्वीप में शायद 3-4 लोग थे जो लोग हमेशा हरिनाम करते रहते थे। एक तो अद्वैताचार्य जो शांतिपुर में थे, कभी यहां भी रहते थे, दूसरे हरिदास ठाकुर और तीसरे श्रीवास ठाकुर। श्रीवास के 4 भाई थे, श्रीमान, श्रीराम, श्रीनिधि और श्रीवास। चारों भाई, कहा जाता है कि श्रीवास ठाकुर और श्री राम ये नारद मुनि और पर्वत मुनि के ही विस्तृत रूप हैं। ये हमेशा नवद्वीप की बुरी परिस्थिति को देखकर रोते थे दया से और कहते थे कि प्रभु, पागल जैसे कीर्तन हुआ करता था उनके घर में महाप्रभु के अवतरण होने से पहले भी, बाद में तो और भी हमेशा कीर्तन किया करते थे। तो लोग श्रीवास को डांटते थे, बोलते थे ये 4 भाई हमें पागल बना देंगे, रात भर सोते नहीं, चिल्लाते रहते। अरे अभी चतुर्मास चल रहा है, भगवान लेटे हुए हैं महाविष्णु चतुर्मास में और रात को भी सोते तो उठा देंगे ये लोग चिल्ला चिल्ला के, और क्रोधित होकर महाविष्णु देखेंगे तो सब सर्वनाश हो जाएगा। सब दिखावट है बस, इसके घर को तोड़कर गंगा में फेंक देंगे। इस मूर्ख को नहीं मालूम, इसके चिल्लाने के कारण और इस तरह से सारे पूजा पाठ करने के कारण जो यवन राजा है उसने बड़े बड़े नाव में, दो बड़े नाव में सैनिकों को भेज रहा है पूरे इस नवद्वीप को नष्ट करने के लिए। इसमें कोई झूठ नहीं था, दो नाव निकली हुई थी पूरी सैनिकों के साथ यवनों का। तो श्रीवास को थोड़ी बहुत चिंता हुई, चिंता अपने लिए नहीं। भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, उनको अपनी भय नहीं था, पर क्योंकि सारे भक्तगण वहां एकत्रित होते थे उनके बारे में चिंता थी। खास करके जब महाप्रभु आए और लीला प्रकट किए, अपना गया जाकर आए, और एक दिन महाप्रभु ने कहा श्रीवास के घर में, सबसे पहले श्रीवास के घर में वो कीर्तन शुरू किए। सब फूल तोड़ते थे, सुबह जाके श्रीवास के घर के आसपास एक पेड़ था, बहुत सारा सुंदर फूल उगता था, कदम वो कल्प वृक्ष था, वो सब वहां आके इस फूल तोड़ते थे, जिसको जितना चाहिए उतना फूल मिल जाता था, ऐसे तोड़ते रहते थे। और वहां बातचीत होता था सुबह सुबह, बोले तुझे मालूम है निमाई पंडित भक्त बन गया, जो हम लोग प्रार्थना करते थे वो हो गया। और निमाई पंडित ने बाद में प्रकट किया अपना, और एक दिन, और एकादशी के दिन महाप्रभु सीधा श्रीवास के घर में सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आ जाते थे, एकादशी के दिन, और कीर्तन शुरू करते थे। और उनका कीर्तन कब तक चलता था? अगले दिन सूर्योदय तक। इस तरह से वो एकादशी मनाते थे, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद का एकादशी मनाने का तरीका सूर्योदय से पहले एकत्रित होना, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं, कब तक? अगला मंगल आरती करके वापस अपने अपने काम पे चले जाते, एक मंगल आरती से दूसरा मंगल आरती। एक बार महाप्रभु आके बोले, दिन भर हम लोग तो कीर्तन करते, रात भर सोते सोते बर्बाद करते जीवन, एक काम करते, सोना भी बंद, एक साल तक दिन भर कीर्तन, रात भर भी कीर्तन। तो उस समय यह समस्या उठी थी, तो श्रीवास ठाकुर को भय था कि सब भक्त लोग यहां आते हैं, उनके जीवन पर कोई तकलीफ ना हो, यह भक्त की चिंता है। भक्त को एक ही भय है कि मैं कृष्ण को भूल ना जाऊं, कृष्ण की भक्ति से छूट ना जाऊं, और दूसरों भक्तों का अच्छा संरक्षण हो। तब महाप्रभु ऐसे नदी के बगल में जा रहे थे और वहां गैयों को देखा, छोटी सी गैया पूंछ उठाकर भाग रही है, दूसरे घास चर रहे हैं, पूरा एक बड़े झुंड गैयों का देखा, तो तुरंत पागल जैसे उन्माद में वो, मैं वो हूं, मैं ही वो हूं, मैं ही वो हूं कर रहे। इधर श्रीवास डर के मारे कि ये लोग सब यवन सैनिक आ रहे हैं, अपने घर में नरसिंह देव के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, भक्तों की संरक्षण करो प्रभु आप, वहां से आई एम ही, मैं ही वो हूं, मैं ही वो हूं, ऐसा चिल्लाते हुए महाप्रभु भागते भागते आए श्रीवास के दरवाजे पर, एक लात मारा, दरवाजा खुल गया, बोल्ट लगाया था अंदर से वो भी खुल गया, मामूली लात नहीं है वो, दरवाजा खुल गया, जो जिसकी उनकी लात किसके सर पर लगी उसका भी जीवन, दरवाजा खुल गया उसके, भगवत धाम का तो खुल गया। और वो आ गए श्रीवास ठाकुर, देखे क्या हो गया, बोले जिसको तुम पूज रहे हो मैं वही हूं। और भगवान ने तुरंत निमाई पंडित ने चतुर्भुज सुंदर स्वरूप दर्शन कराया। तब श्रीवास ठाकुर ने कहा, बोले श्रीवास तुम डर रहे हो, ये यवन सैनिक आ रहे हैं, तुम्हें भय है इसके बारे में? मैं सारे राजाओं का मैं राजा हूं, मेरे होते हुए क्यों भय है तुम्हारे? ज्यादा से ज्यादा वो आएंगे तो मैं उनके सामने खड़े हो जाऊंगा। बोले ले चलो तुम्हारे राजाओं के सामने, और उस यवन राजा के सामने खड़े होकर कहूंगा बुलाओ तुम्हारे सारे मुल्लों को, बुलाओ तुम्हारे सारे मंत्रियों को, बुलाओ सारे धार्मिक लोगों को, बुलाओ और सारे पशुओं को ले आओ, और उन्हें बोलो कि वो इन पशुओं को भगवत प्रेम में नाचने के लिए उन्मत्त करें। और वो लोग नहीं कर पाएंगे, और मैं जाऊंगा जंगल में पकड़ के हाथियों को खींच के लाऊंगा, शेरों को भी खींच के लाऊंगा, सबको खड़ा करूंगा, और जब मैं कीर्तन करूंगा तो सारे शेर और हाथी पागल पागल उन्मत्त होकर नाचने लगेंगे। इतना ही नहीं, वो राजा भी नाचेगा, ये मूल्य लोग भी नाचेंगे, सबके सब नाचेंगे हरिनाम संकीर्तन में। श्रीवास तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो अभी मैं दिखाता हूं। और तब 4 साल की उनकी जो नीस, क्या बोलते हैं, भांजी, उसको देखकर बोले नारायणी हरि नाम लो और रो कृष्ण प्रेम में। हो हरि कृष्ण 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 बोलने लगी वो, पागल जैसे उन्माद होकर नाचने लगी, बेहोश होकर गिर पड़ी वो महाप्रभु की कृपा से। सबसे पहले महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया नारायणी को, जिनके पुत्र थे वृंदावन दास ठाकुर। तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर का जो भय था कि भक्तों को कुछ तकलीफ हो जाए, वो भी निवारण किया महाप्रभु ने। शिवास ऐसे भक्त थे जिनको भय नाम का चीज नहीं था, चिंता भी नहीं थी। हमें मालूम है वो 3 ताली वाला महाप्रभु ने एक बार शिवास से पूछा, शिवास दिन भर भक्ति कीर्तन करते रहते हो, रात भर हमारे साथ रहते हो, तो करते क्या हो, तुम्हारा देखभाल, परिवार का देखभाल कैसे होता है? तुमने 3 बार ताली बजाई बस। बोले इसका मतलब क्या? बोले 3 बार ताली बजाऊंगा और बोलूंगा देखो घर की जो जरूरत है वो देखभाल करना होना चाहिए। 3 ताली के अंदर हमारी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो मैं रस्सी बांध के गंगा में कूद जाऊंगा, बस बड़ा पत्थर बांध के गले पे छलांग मार दूंगा। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए उनके श्रद्धा पर, विश्वास पर। बोले भले एक दिन ऐसा आ जाए जब साक्षात लक्ष्मी जी वैकुंठ में से उतर कर यहां, क्या बोलते, भिक्षा मांगने के लिए जाए पात्र लेकर और उसे भी कुछ ना मिले, पर तुम्हारे घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी। ये महाप्रभु ने बताया क्यों। नवे स्कंद में अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि के प्रसंग में, दुर्वास मुनि अपराध करते हैं अम्बरीश महाराज के प्रति, सुदर्शन उनके पीछे लगता है और वैकुंठ में जाते हैं भगवान से, वो सुदर्शन से बचने, तब भगवान दुर्वास मुनि को कहते हैं क्यों ये भक्त इतने प्रिय हैं भगवान को, क्यों इतने प्रिय, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रिय हैं, क्यों? अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। बोले हे दुर्वास सुन लो, तुम अम्बरीश जैसे भक्त के प्रति अपराध किए, पर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मेरे भक्तों की महिमा क्या है। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त का पराधीन हो जाता हूं, ही अस्वतंत्र इव, मानो मेरा स्वतंत्रता कोई है ही नहीं, जो भक्त कहते वही मैं कर बैठता हूं, बस मेरा स्वतंत्रता होता ही नहीं है उनके सामने। मैं स्वराट हूं पर भक्तों के सामने मैं अपनी स्वतंत्रता को खो बैठता हूं। अस्वतंत्र साधु भीर ग्रस्त हृदयो, क्योंकि उस भक्तों ने मुझे अपने हृदय में बांध के रख लिया है। भक्तैर भक्त जन प्रिय। और ये दर्शन देने के बाद श्रीवास ठाकुर के सारे रिश्तेदारों को बुलाते, तुम्हारी पत्नी को बुलाओ, तुम्हारे बच्चों को बुलाओ, तुम्हारे घर के धोबी को बुलाओ, नौकरों को, नौकरानियों को बुलाओ, धोबी, दर्जी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है तुम्हारे घर, तुमसे संबंधित जो भी है सबको बुलाओ। और सबको भगवान अपने चरण कमल रख के बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करते। इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं कि सर्वोच्च जीवन का सर्वोच्च पदवी क्या है, भक्तों की सेवा, कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा जो है इससे उच्च चीज कुछ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भी उस व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं। क्यों? ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम ताम त्यक्तुम उत्सहे। भगवान के वचन है, क्यों मुझे इतने प्रिय हैं ये दार पत्नी, आगार घर, पुत्र अपने पुत्र, आप्त या रिश्तेदार, प्राणान यहां तक कि अपने प्राण भी, वित्तम धन, इमम परम इस संसार का धन और अगले संसार का धन, मतलब अपने अच्छे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म जो है, हित्वा सबको त्यागने के लिए तैयार है एक क्षण के अंदर। हित्वा माम शरणम याता, उस सब कुछ त्याग के मेरे पास आ जाते हैं, कथम ताम त्यक्तुम उत्सहे, उनको मैं कैसे त्याग सकता हूं, और इसीलिए मैं भी उनके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। और श्रीवास ठाकुर ने दिखाया कीर्तन के दौरान, एक बार जब उनके पुत्र का निधन हुआ और स्त्रियां रो रही थी, श्रीवास ठाकुर जाके सबको बोल के आए कि रोना है तो रो, आवाज बिना आवाज की, अगर आवाज आया और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में कुछ बाधा आया, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम्, उनकी संतुष्टि उनकी प्रसन्नता में कुछ बाधा आया तो मैं भी जाके छलांग मार के मर जाऊंगा, बहुत दोनों के लिए रोना पड़ेगा, सोच लो। और आए और मुस्कुराते, बड़े मुस्कान के साथ महाप्रभु के कीर्तन, बगल के कमरे में 7.5 घंटा कीर्तन चला। क्या महाप्रभु को मालूम नहीं था? 7.5 घंटा के बाद महाप्रभु कह रहे हैं कुछ कीर्तन में आनंद नहीं है, कुछ तो यहां अशुभ हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, पर अंत में भक्तों ने कहा, निशिवास ने कहा, प्रभु जहां आप हरिनाम कर रहे हो, आप वैयक्तिक रूप से बैठकर हरिनाम कर रहे हो, वहां अशुभ क्या हो सकता है? पर दूसरे भक्तों ने कहा कि प्रभु इनका बेटा ही गुजर गया। क्या, कब हुआ? बोले 7.5 घंटा हो गया, बताया क्यों नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, कैसे बताते आप आनंद ले रहे हो? तब महाप्रभु के आंखों में से आंसू आने लगी और बोले, ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूं, ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूं। किसी को पता क्या क्या त्याग रहे, क्या था त्यागने का, क्यों बात कर रहे हैं? उन्हें नहीं मालूम था कि बहुत जल्दी महाप्रभु संन्यास लेने वाले। तो यहां हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर का प्रेम भगवान के प्रति, के निष्ठा पूर्ण रूप से महाप्रभु की प्रसन्नता को, वो उनकी प्रसन्नता, ये एक सेवक है, एक आदर्श सेवक जो भगवत प्रेम में अग्रसर हुआ है, उसका लक्षण हम यहां देखते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रीवास को अपने पुत्र के गुजर जाने पर दुख नहीं था, पर वो दुख से भगवान के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसमें बाधा नहीं पड़े, उसने उसको सेकेंडरी परवाह नहीं की उसके बारे में, ये प्रेम का लक्षण है, यही यहां बता रहे हैं। शमनीम सर्वकर्मणाम वितरिष्ये यया चासो भयम चा तितरिष्यति। तो इस तरह से आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं गीता में, कैसे व्यक्ति का योगक्षेम मैं खुद अपने कंधे पे लेके चलता हूं, दो चीज, अनन्याः चिंतयन्तु माम, किसी अन्य आश्रय नहीं बल्कि पूर्ण रूप से मेरे आश्रय जो लिया हुआ है, अनन्याः चिंतयन्तु माम, ये जनाः परियुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां, अनन्य और नित्य, अहैतुकी अप्रतिहता, बिना कोई हेतु के और बिना रुकावट के जो भक्ति करता है, योगक्षेमं वहाम्यहम, उसकी चिंता अभी मेरी चिंता है। भगवान कहते हैं उसकी चिंता अभी मेरी चिंता है। अगर भगवान किसी की चिंता करे, हम उसकी चिंता क्यों करें, उस चीज की चिंता। पर भक्त भी चिंता करता है, उसको भगवान की चिंता उसकी चिंता है। भगवान की चिंता क्या है, अरे बद्ध जीवों का उद्धार कैसा होगा, चिंता मत करो प्रभु, मैं आया ना, चिंता करो ना, का मैं आए, अपने आप को नरक में डाल के, चिंताजनक परिस्थिति में डाल के भगवान की चिंता को दूर करने का प्रयास। और इसीलिए अपनी खुद की चिंता नहीं है तो उसकी चिंता भगवान को करना पड़ता है, अरे कहीं भी छलांग मार रहा है, कुछ भी करने जा रहा है मेरे लिए, तो इसका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। उसका नहीं, उसके सारे परिवार इतने अच्छे, आसपास जुड़े हुए कोई भी है, सबकी चिंता मेरी। उसका विकृत प्रतिबिंब हम यहां देखते हैं इस भौतिक संसार में। जो व्यक्ति देश के लिए अपना परिवार छोड़ के देश के लिए चला गया लड़ाई में, क्या देश पेट्रियट, देश प्रेमी, देश के लिए जिन्होंने एक्चुअली त्याग किया, देशभक्ति जिन्होंने किया, अंग्रेजों के जमाने में स्वतंत्रता की लड़ाई में जो जो जेल गए थे, किसी भी तरह से जेल गए हो, बाय चांस सब स्वतंत्रवादियों के साथ खड़े थे, ऐसी चाय पीते खड़े थे और सबको अंदर ले लिया, पर आप अगर सर्टिफिकेट दे सकते हो कि मैं जेल में गया था देश के लिए, तो देश न केवल आपकी, आपके सारे 21 पीढ़ियों का इंजीनियरिंग सीट फ्री में करा देंगे। अभी भी है ऐसा, फ्रीडम फाइटर्स कोटा, देश के लिए जिन्होंने लड़ाई की, क्योंकि अपना परिवार की चिंता न करते हुए देश के सुरक्षा के लिए चले गए, तो देश का ऑब्लिगेशन है। अरे हमारे लिए अपना परिवार छोड़ दिया बेचारा, उस परिवारों की चिंता, और उनको पढ़ाई ठीक से नहीं मिला, पैसा ठीक से नहीं मिला, तो उनकी चिंता, उनको सारा कंसेशन, उनको ट्रेन में फ्री कंसेशन, ट्रैवलिंग के लिए फ्री कंसेशन, सीट के लिए फ्री कंसेशन, बहुत सारे ऐसे, ये विकृत प्रतिबिंब है। तो जिस व्यक्ति ने सब भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग दिया है, उस व्यक्ति के लिए भगवान चिंता नहीं करेंगे? एक पिता अपने बच्चों के प्रति कितना चिंता करता है, इसका क्या होगा? तो परम पिता है, वो चिंता नहीं करेंगे? हमें चिंता है इसके मतलब भगवान के प्रति विश्वास नहीं। चिंता भय इत्यादि, भज हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणान, मतलब है कि ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, इसमें पूर्ण रूप से अगर श्रद्धा होगी भक्ति में, तो हम जानेंगे, सेवा के रूप में हम करेंगे, पर हमें विश्वास है कि अभी जैसे भगवान चाहे वो होगा। इस तरह से आदर्श उदाहरण कपिल मुनि, और अपने कर्तव्य को उन्होंने किया, ये सुंदर चित्र हम देखते हैं भागवत के ऊपर, अपनी माता को भी वो प्रदान, ज्ञान प्रदान किए, जिससे माता देवहूति भी भवबंधन से मुक्त हो गई। एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र, इस प्रसंग में एक आदर्श परिवार का उदाहरण है, किस तरह से एक आदर्श अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना वैयक्तिक कर्तव्य निभाना जवाबदारी के साथ। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी।